हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है
जी? मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चार्टबस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
प्रोग्राम है चार्टबस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्टबस्टर्स। मैं हूं सादिया असद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजू भैरल गिल। आप भी हमारे इस शो में शामिल हो सकते हैं अपने लैंडलाइन से फ्री कॉल करके 0800-777-89 पर। अगर आप अपने मोबाइल से कॉल करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप facebook.com/chartbustersvoa यानी हमारा चार्टबस्टर्स का पेज भी विजिट कर सकते हैं, अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं। और आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे अमजद नदीम घल्लू ने जो फरमाइश की थी। वो कहते हैं कि 6 दिसंबर को अजीज़ मियाँ कवाल की बरसी थी, तो उस हवाले से आप हमें कोई कवाली सुना दीजिए। बल्कि आपने जो कवाली लिख के भेजी थी अमजद नदीम, वो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन मैंने आपके लिए आज 2 कवालियाँ रखी हैं, तो बल्कि अपने तमाम सुनने वालों के लिए। और अगर आप लोग भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें अजीज़ मियाँ कवाल के हवाले से, कोई यादें कोई बातें, तो ज़रूर आप हमें 0800-777-89 पर कॉल करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अजीज़ मियाँ की आवाज़ में ये कवाली।
ख्वाब राहत में थे उम्मे हानी के घर, जिब्राइल ने आके सुनाई खबर, चलिए चलिए शहंशाह वाला दौर, हक शौके लगा आज की रात है, जागो जागो शहंशाह दुनिया दी, उठो उठो जराना मका के मकी, देखो देखो ये हाजिर है रूहुल अमीन, रूह तुम पर फिदा आज की रात है, बर्क से तेज है बराकाब का, क्योंकि खालिद को है इश्तियाक आपका, अब नहीं देखा जाता फिर आकाब का, जल्दी चलना रवा आज की रात है, बागे आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली, ये सवारी सुए जाते बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है, जब शौके तलवार कदम साथ है, दाएं बाएं फरिश्तों की बारात है, सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है, इतने रहमत फरिश्ते छिड़कते जले, जिसकी खुशबू रस्ते में हिटते जले, चांद तारे जलू में चमकते जले, कहके शान देर पा आज की रात है, और नबियों को ये मर्तबा ही नहीं, अर्श आजम पे कोई गया ही नहीं, ऐसा रुतबा किसी को मिला ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात, रहमत हक के जौहर खुले, इस तरफ से शिफात के दफ्तर खुले, कैदिया देख है फैज के दर खुले, मांग जो मांगना आज की रात है। सामईन, अहले इल्म का मजमा है, तफसीर हुसैनी मतबूआ मिस्र, दूसरी जिल्द के हवाले से कह रहा हूं, 770 मरतबा बारी ताला ने कहा मांग मांग मांग, 770 मरतबा मेरे नबी ने क्या मांगा, तवज्जो। शहन अर्ज की उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मेरे मालिक तू गफार है, तो फिर कहा हक ने आए महापारे नबी, तवज्जो, फिर कहा हक ने ऐ महापारे नबी, तू मेरा चांद और तारे नबी, ऐसा घबराना ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है, क्यों के लुत्फ जब है के देखेंगे सारे नबी, या मोहम्मद तेरी उम्मत पे बरसेगी रहमत मेरी, और बख्श दूंगा कयामत में उम्मत तेरी, तुझसे वादा मेरा आज की रात है, और तू ना मुझसे अलग, मैं ना तुझसे अलग, और जो तुझसे गया वो मुझसे गया, और जो तुझसे मिला वो मुझसे मिला, बस यही फैसला आज की रात है, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, देख ले का मजा आज की रात है। अल्लाह जाने
आप
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया असद और मेरे साथ हैं अंजुम हैरल गिल। और आप सबको एक बात मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कही है, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं दोबारा से कहना चाहूँगी, जब आप हमें कॉल करते हैं तो सिर्फ अपना नाम बताइएगा और बताया करें और फिर साथ में अपनी जगह का नाम बताया करें। जब आप ऑन एयर आएँ तो फिर आप एक दफ़ा सब लिसनर्स को, अंजुम को, मुझे एक ही दफ़ा अस्सलाम वालेकुम कह दिया करें। और हाल अहवाल आप पूछते हैं, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप, हम बिल्कुल ठीक हैं, तभी तो यहाँ आए हैं आपके लिए प्रोग्राम करने। तो इसलिए नहीं कह रहे कि हमें बुरा लगता है, इसलिए कह रहे हैं कि फिर टाइम भी ज़ाया होता है, हम ज़्यादा कॉल्स भी नहीं ले सकते और ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते। मैं एक दफ़ा आपका नाम अनाउंस कर देती हूँ, आपकी जगह का नाम अनाउंस कर देती हूँ, आप दोबारा से वो सारा रिपीट करते हैं, फिर से बताते हैं मैं ये बोल रहा हूँ, फलां जगह से बोल रहा हूँ, तो उसकी बजाय आप जो कहना चाहते हैं वो कहा करें ताकि जल्दी जल्दी आपकी बात भी पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। जावेद गुज्जर ने लैया से कॉल की थी और चार दफ़ा सलाम करने के बाद कॉल ड्रॉप हो गई, तो आप फिर से कर लीजिए कॉल और सिर्फ नाम बताइएगा कि मैं जावेद बोल रहा हूँ लैया से, तो अंजुम आपकी कॉल मेरे पास थ्रू करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो बात करते हैं माजिद रहमान से जिन्होंने घोटकी से कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम बाजी
जी, बोलिए। वालेकुम सलाम।
हेलो, मैं बात कर रहा हूँ घोटकी सिंह से। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पिछले जुमे मेरी गाने की पूरी की और मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि जो है आपने मेरा जो है कैलेंडर जो आपने आपके पास मैसेज किया था वो आपने मेरा कैलेंडर का एड्रेस नोट कर लिया
जी, कर लिया मैंने
आपसे इस बात को पूछना चाहूंगा। आपकी बहुत मेहरबानी,
थैंक यू सो मच।
कोई और गाने की फरमाइश मेरी पूरी कर दे तो आपकी मेहरबानी,
ठीक है, थैंक यू सो मच। और मलिक महराज हैं भकर से और मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि जिसने मुझे एड्रेस भेजे हैं मैंने फौरन नोट कर लिए हैं, बल्कि कुछ एड्रेसेस मुझे अंजुम ने भी भेजे थे जो आपने उनको फोन पे बताए थे, तो हमने सब नोट कर लिए, जब भी कैलेंडर भेजेंगे आपको पहुंच जाएंगे। जी मलिक महराज साहब।
जी मैं दूसरी मर्तबा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रहा हूं। जी हिना नसुल्ला का गाना मेरी चुनिंदियां रेशमी तंदा वो
सुना दिया था हमने, आपकी पसंद का ये गीत सुना दिया था और शायद आपसे मिस हो गया हमारा वो शो।
मैंने नहीं सुना था फिर, मैं क्योंकि घर पर नहीं था।
ठीक है, तो किसी रोज फिर हम आपको सुनवा देंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच। और अपना टेलीफोन बल्कि रेडियो जो है वो बंद रखा करें, मुझे आवाज आ रही होती है पीछे, बहुत शुक्रिया। और मेहर खालिद महमूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मेरी मोहतरम बहन मार खालिद महमूद तहसील लियाकतपुर ज़िले में। सिस्टर ये हम अपने शहर का नाम लेते हैं ना, हमें बहुत प्यारा लगता है, आप हमें मना मत किया करें।
नहीं नहीं मना नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि जब मैं बता देती हूँ तो फिर आप ना बताया करें, या तो फिर बस आप ही बताया करें, दो दो दफा तो
बात ठीक है। आपके लिसनर बहुत सारे होते हैं ना हमारी तहसील लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रही खान में, आपके बेशुमार लिसनर तादाद में है जो अपने जिले और तहसील लियाकतपुर सुनने को बहुत शौक दिल से सुनते हैं। वो
तो मैं कह दिया करूंगी तहसील लियाकतपुर।
मेरे साथ है महार गुलाम यासीन और राजा मोहम्मद सफदर साहब जो तल्ला गंग से आपका प्रोग्राम सुनते हैं और मुझे फोन भी माशाल्लाह उनके आते रहते हैं,
तो हमें भी किया करें ना कॉल,
बहुत बड़ा लिसनर है,
बहुत शुक्रिया उनका, तो हमें भी कॉल किया करें। और
सिस्टर हमें कोई सरेकी गीत अताउल्ला,
ठीक है, सुना देंगे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मैं समझ सकती हूँ कि हर शख्स को अपना शहर अपनी जगह बहुत प्यारी होती है, लेकिन हम भी आपको ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपकी जगह का नाम लें, बाज़ दफ़ा रह जाता है, तो थैंक यू सो मच आप सब का। और अफजल अज़ीज़ ने चकवाल से फरमाइश की थी और हबीब हुसैन ने रावला कोट से, सैयद हबीब हुसैन शाह ने रावला कोट से कहा था अल्लामा इकबाल का कलाम हमें मुझे सुनवा दीजिए, और अफजल अज़ीज़ ने चकवाल से इसी मुझे गज़ल की फरमाइश की थी, तो अबरारुल हक की आवाज़ में आपके लिए अल्लामा इकबाल का ये कलाम पेश करते हैं।
कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में, कभी है हकीकत मुंतज़र नजर लिबास मजाज में।
अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया असद और मेरे साथ हैं अंजुम हेरल गिल, और आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं 08007778 पर कॉल करके अपने लैंडलाइन नंबर से। मोबाइल से कॉल करेंगे तो आपके पैसे लगेंगे। शामिल करते हैं फेसबुक पर हफ्ते भर जो आप हमें पैगाम भेजते रहे हैं। वो हमारे बहुत से दोस्त मुझे अभी अभी पैगाम भेज रहे हैं कि ये गाना सुना दीजिए, तो वो तो फिर अगले शो में ही शामिल हो सकता है। और दूसरे नंबर पर ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ सकती क्योंकि कंप्यूटर मेरे एक साइड पर पड़ा है, आवाज़ ठीक नहीं आएगी आप तक, ठीक है। और शुएब हसन निहालिका फ्रॉम रोडा थल पंजाब पाकिस्तान से लिखते हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम, बड़े इंतज़ार से होती है जुमे की शाम, बहुत पसंदीदा है चार्ट बस्टर्स मेरा प्रोग्राम, कॉल मिलती नहीं, मैसेज के जरिए है मेरा पैगाम। सीनियर लिसनर खालिद उमर न्याजी, सेठ मुमताज़ और घलू साहिबान प्रोग्राम के जरिए जिनकी है बहुत पहचान, कॉल पर दूसरों को मौका दिया करें कभी कभी भाईजान। हाँ सच, नजमा की गज़ल सुनने को नहीं मिल रही, लगता है कुछ ज़्यादा बढ़ गया है उनके घर का काम। अंजुम भाई जो सुन के हंस रहे हैं मेरी शायरी, उनसे गुजारिश है कोई भी सुना दें बाबा बुल्ले शाह का कलाम। बहुत सी बातें जहन में हैं, जब कॉल मिली तो करूँगा तमाम। दूसरों के मैसेज भी आपने पढ़े हैं इसलिए आगे नहीं लिख रहा, वस्सलाम। देखे ना, आपने कुछ लिखा तो मैंने पढ़ दिया। आप हमेशा लिखते हैं मेरा मैसेज शामिल करें और मैसेज होता कोई नहीं है, तो बस नाम सिर्फ शामिल करने से तो मैं रही, तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं सबको कहती हूँ कि कुछ तो लिखा करें। किसी ने लिखा होता है सलाम, मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, ये मेरा दूसरा मैसेज है, ये मेरा तीसरा मैसेज है, तो बहुत शुक्रिया आपका शुएब हसन। उन्होंने बुरा मनाने की बजाय मसला जो है उसका हल निकाला है, कि बहुत अच्छा उन्होंने लिख के भेजा है। तो सिर्फ शौकी छोटी और गुड्डी के साथ दरवेश बाग पटन बारामूला कश्मीर से लिखते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मनफी दर्जा हरारत होता है, और इसमें इस मौसम की सबसे जो बुरी बात मुझे लगती है वो ये है कि उन्हें शदीद नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है जो बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है, और उनके घर वाले भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि चाहे जो भी हो, जुमे का इंतज़ार हम सबको बेसब्री से रहता है। थैंक यू सो मच। और आबिद गुलजार ने सिर्फ सलाम ही कहा है, और नवीद खान पानेजई ने खानोजई से सिर्फ मैसेज भेजा है और यही लिखा है कि ये मेरा दूसरा या तीसरा शायद मैसेज है। इसके अलावा जी ये कौन है, आशिक खास खेली, आसिफ हुसैन, काशिफ, ताज मोहम्मद, हाजी खान, अमीर बख्शांडियो, मीर अमानुल्ला बरोही, गाजी खान खोसा, महरुद्दीन मोहम्मद, यूसुफ कौरी, गुलाम रसूल, माटी शाद, अब्दुलशकूर, अब्दुल गफ़ार, जाफरी अहमद खान और मरी बलोच, इन सब ने सिंधी रेडियो लिसनर क्लब नवाब शाह सिंध से मैसेज भेजा है और एक गीत की आपने फरमाइश की है तो और अभी अभी की है उस गीत की फरमाइश, मैं देख रही थी फेसबुक पर, लेकिन बात यह है कि उसी गीत की फरमाइश अशोक ग्रोवर ने भी की थी भारत से, तो आप दोनों की पसंद का एक ही गीत है तो ज़रूर सुनवा देंगे, आप सुनते रहिए। इश्तियाक वानी बांडीपुरा कश्मीर से लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत पसंद है, अपने सारे घर वालों के साथ बैठ के सुनता हूँ, आपने भी गीत की एक फरमाइश की है तो अभी अभी जैसा प्रोग्राम शुरू हुआ है साथ ही आपने फरमाइश की है, जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तब मैसेज करना शुरू किया करें आप, ताकि आपकी फरमाइश के गीत जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल हो सकें। नज़ीर अहमद भिंडर अरूप गुजरांवाला से लिखते हैं, मेरी फरमाइश का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गीत सुनवा दीजिए प्लीज़, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने गुज़श्ता जुमे को भी मेरी फरमाइश पूरी की थी। बिल्कुल, हमने नोट कर लिया है, बहुत शुक्रिया। माविश इनाम पाकिस्तान से लिखती हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम, मैं फेसबुक पर लोगों के दुख और दर्द मिटाने के लिए काम करती हूँ और लतीफ़े और अच्छी अच्छी बातें मजाहिया बातें पोस्ट करती हूँ अपने फेसबुक पर पेज पर, ताकि मेरे तमाम जो देखने वाले विज़िट करने वाले हैं वो कुछ लम्हों के लिए अपने दुख और अपने गम भुलाकर हंस सकें, मुस्कुरा सकें। मंजूर हुसैन गिलगित बल्तिस्तान से लिखते हैं, सादिया जी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, सुपर हिट है, क्या बात है आपके प्रोग्राम की, मेरा मैसेज इस शो में ज़रूर शामिल करें और कैलेंडर भी भेजें, कैलेंडर मिल जाएगा, इंतज़ार कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। इरफान हसन और उनकी मिसेज शाहिना हसन हंडवारा कश्मीर से प्रोग्राम को सराह रहे हैं, कहते हैं आपका शो हमें बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। और अब चलते हैं शौकत अली अंजुम साहब की फरमाइश पर, जो भिंडर कहाँ से बल्कि कहते हैं, वो तो इतना ज़्यादा कॉल्स करते हैं मैं भूल ही गई हूँ, डारांवाला से, देखा याद आ गया मुझे, तो हमेशा फरमाइश करते हैं और मैं हमेशा भूल जाती हूँ और जब भी आते हैं बगैर शिकवा किए फिर से वही फरमाइश दोहरा देते हैं, तो थैंक यू सो मच, मुझे ऐसे लोगों का पेशेंस बहुत अच्छा लगता है जो बहुत ही ज़्यादा हौसले से और सब्र से इंतज़ार करते हैं। तो शौकत अली अंजुम साहब, मुझे यकीन है आप शो सुन रहे होंगे, तो आपकी पसंद का ये गीत।
हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरां, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, रुई की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्मो सितम के कोहे गरां, रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़ कड़ कड़के, ستم کے کوہِ گراں جب ظلم و ستم کے کوہِ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں چارٹ بسٹرز اور ہمارے ساتھ ہیں صابر کھومان وہاڑی سے. السلام علیکم. ہیلو
ہادیہ, میں صابر علی کھومان بات کر رہا ہوں وہاڑی سے. میں میرا تحصیل کا نام ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اور میں سادی باجی یہ بات کہوں گا کہ میں ریڈیو جو ریڈیو پاکستان ہے یا ریڈیو وائس آف امریکہ ہے باقاعدگی سے میں سنتا ہوں. خصوصاً آپ کے پروگرام کچھ کہیے تو یہ پروگرام آپ کا چار بسٹر ہو گیا. تو مجھے ایک کیلنڈر آپ بھیجوائیں جس میں جو آپ مختلف لسنر کو بھیج رہی ہیں تو میں آپ کو پتہ لکھواتا ہوں. جو الادیتا شاکر بھائی کے پتہ نا پیپل اڈا پوسٹ آفس پیپل اڈا وہاڑی اڈا جو ہے نا ان کے
بالکل لکھا ہوا ہے جو ہے
میں انشاءاللہ ان سے لے لوں گا.
ٹھیک ہے, میں آپ کا نام
اس پروگرام کو جو ہے نا ریڈیو پاکستان کے مختلف پروڈیوسر تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ یہ پروگرام سنیں اور ایسے ہی پروگرام ہمیں
بہت
شکریہ.
تھینک یو سو مچ. اور بلکہ اور بھی ہمارے کچھ ایسے لسنرز ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ دیتا شاکر صاحب کے ایڈریس پہ بھیجنے کو کہا ہے, تو ہم ان بھیج دیں گے کافی سارے اور پھر ہم آپ کو بتا بھی دیں گے کہ ہم بھیج چکے ہیں, آپ لے لیجیے. جی
جی سادی بھائی, حافظ بشیر ہم تبسم صاحب ہیں, وہ نبینا ساتھی ہیں ہمارے. بہت سارے پاکستان میں نبینا ساتھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں, سب آپ کو بہت پیار کرتے ہیں. میرا سلام اللہ دیتا شاکر بھائی سب, ظفر لوکا صاحب کو, سب کو سلام, بہت مہربانی,
بہت تھینک یو سو مچ. اور یاسین ہے پاک پتن سے. السلام علیکم. ہیلو.
وعلیکم السلام.
جی کہیے
باجی. میں ہر دفعہ پروگرام ہر جمعہ کو سنتا ہوں, میرا نمبر نہیں ملتا.
بس یہی تو مشکل ہے نا, آج مل گیا نا.
اور سب دوستوں کو, ہاں جی سب دوستوں کو ملتا ہوں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اور میں ایک سنا دوں.
بولیے.
پریشان رات ساری سو جاؤ
ستاروں. ٹھیک ہے, بالکل, تھینک یو سو مچ. اور اگلے کالر ہے فاروق آوان بھکر سے. السلام علیکم فاروق.
ہاں سادیا بیٹے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام
بیٹے. میں نے آپ سے دعوے کی فرمائش کی تھی یہ تین جمعے پہلے.
پھر سے بتائیے کون سا تھا؟
گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ, یہ شیریں فرحات فلم کا گانا ہے.
میں نے ابھی تک نہیں پورا کیا. کیا
نہیں سنا ہے؟
اچھا, معذرت چاہتی ہوں, میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات, یہ فرمائش میں نے پوری کر دی ہے. ایک دو دفعہ میری نظر سے گزری کیونکہ میں نوٹ کر کے رکھ لیتی ہوں, تو میں نے خود ہی سوچ لیا کہ یہ تو پوری ہو گئی.
اچھا, امام صاحب میرے پرانے دوست ہیں, انہیں بھی سلام عرض کر دینا.
جی پوچھا تھا میں نے ان سے, بالکل پوچھا تھا, لیکن میں یہ سمجھی کہ آپ کی فرمائش میں نے پوری کر دی ہے. چلیے اب نیکسٹ جمعے کو انشاءاللہ میں ضرور پوری کر دوں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ایک دو میسیجز شامل کرتے ہیں پھر چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف. ماجد زمان شانی نے گھوٹکی سے سب کو سلام کہا ہے. اور ماجد رحمان یہ ایک ہی تو نہیں ہے, یہ بھی گھوٹکی سے ہیں, لکھتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے لیکن گزشتہ جمعے کا ٹاپک تو مجھے بہت ہی پسند آیا, تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا. سید بشارت تلاگام پٹن بارہ مولہ کشمیر سے لکھتے ہیں کہ پروگرام اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں, اس پروگرام کو اللہ اور چار چاند لگائے, بہت ہی اچھا جا رہا ہے, سن کر بہت اچھا لگتا ہے, تھینک یو سو مچ بشارت صاحب. اور محمد اکرم ملتان سے لکھتے ہیں آپ کو پروگرام تو بہت باقاعدگی سے سنتا ہوں لیکن میسج میں دوسری بار ہی کر رہا ہوں, آپ ہمیں ریگولر میسج کیا کریں, اس میں کچھ سجیشن دیا کریں. اور آپ سب لوگ اپنے ایڈریسز ہمیں بھیجیے, ہم آپ کو کیلنڈر بھیجیں گے کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگوں کو اگر یاد آیا تو تب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف. اور اس کی فرمائش کی تھی ڈاکٹر محمد اعظم نے خوشاب سے, گزشتہ ترجمے کو اے نجر کی آواز میں وہ یہ گیت سننا چاہتے تھے. چلیں اس کردو سے ایک کالر ہیں، اس سے پہلے کہ ان کی کال ڈراپ ہو جائے ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم میڈم. السلام علیکم.
جی جی بولیے افتخار صاحب.
یہ میں نے پہلے بھی، یہ میں شکایت نہیں کر رہا ہوں یا دھیان نہیں کر رہا ہوں، میں نے 7 ہفتے پہلے آپ کو 3 گانوں کی ریکویسٹ
کی، 7 ہفتے پہلے.
جو بھی اویلیبل ہو سنا دیں. تو خیر سننے کو نہیں ملا ابھی، پچھلی دفعہ بھی کال ڈراپ ہو گیا. ابھی گزارش ہے کہ نیکسٹ جمعے کو مہربانی 40 کا وہ گانا ہے لتا کی آواز میں، یہ کائنڈلی سنا دیجیے گا.
کون سے والا گیت کے بول بتائیں.
نصیب ہوگا میرا مہربان کبھی نہ کبھی.
ٹھیک ہے بالکل سنوا دوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ افتخار صاحب.
بہت شکریہ
جی. تھینک یو سو مچ. اور چلتے ہیں ڈاکٹر اعظم صاحب کی فرمائش کی طرف.
او ہمدم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے. او ہمدم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے. تیرا میرا ایسا ناتا میں ساتھ ہوں تو آواز ہے. او ہم دم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے. او تیرا میرا ایسا ناتا میں ساتھ ہوں تو آواز ہے. او ہم دم او ساتھی مجھ سے روٹھ کے جانے والے مجھ سے کیسے روٹھے گا. مجھ سے روٹھ کے جانے والے مجھ سے کیسے روٹھے گا. ایک پل میں صدیوں کا بندھن ساتھی کیسے ٹوٹے گا. میں دل تو دل کی دھڑکن میں دھرتی ہوں تو ساون میں راز ہوں تو ہم راز ہے. او ہم دم او ساتھی مجھے تیری دوستی پہ ناز ہے. او ہم دم او ساتھی لا 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 لا.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں چارٹ بسٹرز. میں ہوں سعدیہ اسد اور میرے ساتھ ہیں انجم ہیرلڈ گل. ناصر الدین نے چترال سے پروگرام کی بہت زیادہ تعریف کی، اتنی زیادہ تعریف کی ہے کہ میں پڑھتے ہوئے بھی شرما گئی کہ اب میں اتنی تعریف کس طرح سے آن ایئر کروں. تو بہت شکریہ ناصر الدین صاحب، آپ نے چارٹ بسٹرز اور کچھ تو کہی اور میری کہانی تینوں پروگرامز کو بہت سراہا ہے، آپ کا بے حد شکریہ. عمر تانترے نے پتوسا رفیع آباد کشمیر سے کافی خوبصورت لفظوں میں پروگرام کی تعریف بھی کی ہے اور ایک گیت کی بھی فرمائش کی ہے علی عباس نقوی کی آواز میں. میں ضرور کوشش کروں گی عمر تانترے کے آئندہ پروگرام میں شامل کر سکوں. خرم نواز جویا جو عمان میں ہوتے ہیں، عمان میں ہوتے ہیں اور وہاں پر کام کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام کو بہت سراہا ہے اور کہا ہے کہ ایک گھنٹہ پورا اپنے کام سے نکال کے آپ کا پروگرام سنتا ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں، آپ کا آپ کے ہم بہت ممنون ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کیلنڈر کے لیے ایڈریس بھیجا ہے، آپ کا تعلق دیپال پور اوکاڑا سے ہے تو کیلنڈر انشاءاللہ آپ کے گھر چلا جائے گا. اور پروین گروور جی نے بھٹنڈا سے ہمیں ایک تصویر بھیجی ہے جو کہ ان کے اسکول کی ہے، بہت خوبصورت اسکول ہے، بہت صاف ستھرا اور بلڈنگ بھی بہت ہی اچھی ہے. تھینک یو سو مچ پروین گروور جی، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اتنی خوبصورت آپ کے اسکول کی تصویر. اور فیض احمد خان بلوچ میرنے والا جھنگ سے لکھتے ہیں मेरा गांव, एक छोटा सा उन्होंने मुझे पैराग्राफ लिख के भेजा है जिसमें उन्होंने अपने गांव का तारुफ भेजा है, तो मुझे अच्छा लगा। तो जैसे अभी हमारे कॉलर ने कहा कि अपने गांव, अपनी तहसील, अपने ज़िले का नाम सुनना अच्छा लगता है, तो इन्होंने तो बाकायदा सब कुछ लिख के भेजा और बड़े अच्छे लफ्ज़ों में लिखा। लिखते हैं, सादिया साहिबा, सबसे पहले आपको और अंजुम साहब को सलाम पेश करता हूँ। दोनों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप मेरे फेसबुक के पैगाम और मेरी शायरी अपने खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आज मैं अपने गाँव मीरनेवाला का तारुफ भेज रहा हूँ, उम्मीद है अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगी। लिखते हैं कि नाम तो है मीरनेवाला और जो हमारे जद्दे अमजद मीरन खान बलोच ने 1880 में आकर आबाद किया और अपने नाम पर ही गांव का नाम रखा। और इसके मशरक में माहिवाल को डिबोने वाला दरिया चनाब गुजरता है, जो पक्का घड़ा उठाकर उसकी जगह कच्चा घड़ा रखने वाले शख्स की तलाश में घूमता फिरता समंदर में जा गिरता है। गाँव के मगरब में पक्की सड़क झंग लया रोड गुजरती है, जो खुद तो कहीं नहीं जाती लेकिन लाखों मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का काम खूब सरंजाम देती है। शिमाल में रांझे की चाहत हीर का तारीखी शहर झंग है, जहां हीर का सादा सा मकबरा है जो आने जाने वालों को मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुनाता रहता है। और गांव के जनूब में थोड़े फासले पर हजरत सखी सुल्तान बाहू का आलिशान मकबरा है। गांव की ज़मीन बेहद ज़रखेज़, पानी मीठा और सेहत अफजा है, हर किस्म की फसलें और अनाज पैदा होता है। गांव में 3 प्राइवेट और 2 सरकारी मेल और फीमेल स्कूल हैं। गांव की आबादी तकरीबन 10,000 है, 70% लोग खेतीबाड़ी करते हैं, बाकी मुलाजम, कारोबारी और मजदूर तबका है। तालीम का तनासब 90% है। ये है जी मेरा गांव मीरनेवाला। बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद खान, अच्छा लगा आपके गांव के बारे में पढ़कर। बल्कि एक दफ़ा पहले भी मैंने कहा था कि कुछ अपने गांव के बारे में, अपनी जगह के बारे में, शहर के बारे में आप हमें ज़रूर भेजा करें। इससे एक तो बाकी लोग भी मुतारिफ़ होते हैं, जैसे मुझे नहीं पता था मैं गुजरी तो हूँ झंग लया रोड से, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसा गाँव है, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो अब मुझे भी पता चला है कि वहाँ पर तालीम का क्या तनासब है, वहाँ पर कितने स्कूल्स हैं, लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, तो अच्छा लगता है। आप भी इसी तरह से खूबसूरत सा तारुफ अच्छे लफ्ज़ों में, इन्होंने तो बहुत ही अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो ज़रूर बताइए कि दाएं क्या है, बाएं क्या है, शिमाल में क्या है, जनूब में क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त। और हमने आपसे कहा था, बल्कि मैं तो खुद ही भूल गई प्रोग्राम के दौरान, कि अज़ीज़ मियाँ कवाल की 6 दिसंबर को बरसी थी, तो हमने उनके बल्कि अमजद नदीम घल्लू ने फरमाइश की थी कि कवालियाँ शामिल करें, तो हमने कहा था हमारे साथ कुछ बातें शेयर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। तकसीम से पहले वो दिल्ली में पैदा हुए और तकरीबन 5-6 साल के थे, शायद 1942 में पैदा हुए और 47 में सब घर वालों के साथ, फैमिली के साथ लाहौर चले आए और वहीं पर ही फिर उन्होंने तालीम जो है कवाली की बाकायदा 14 या 16 साल मुसलसल वो पढ़ते रहे। उन्होंने 3 MA किए थे, फ़ारसी में, अरबी में, उर्दू में, पंजाब यूनिवर्सिटी से। और 1966 में जो शाह ईरान थे, जब वो पाकिस्तान आए तो वहाँ पर इन्होंने कलाम पेश किया, उन्हें बेहद पसंद आया, पहला इनाम भी इनको मिला, गोल्ड मेडल भी मिला और वहीं से इनको शोहरत भी मिलना शुरू हुई। तो आप भी हमारे साथ कुछ शेयर कीजिएगा अगर आपके जहन में कुछ ऐसा हो, कौन सी इनकी कवाली आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और किस बात के लिए ये मशहूर है, इनके पास और कौन सा रिकॉर्ड है, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। और हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। नज़ीर अहमद भिंडर जी ने अरूप गुजरांवालों से फरमाइश की थी, तो बहुत शुक्रिया नज़ीर जी, क्योंकि आपने फेसबुक पर भेजा है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, लीजिए आपकी पसंद का ये गीत।
रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हर दम कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल के खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम पे जीते मैं कदम कदम पे हारा, रहा गर्दिशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम नसीबी जो नहीं तो और क्या है ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है के उसी के हो गए हम जो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हरदम जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले पड़े जब गमों से पाले रहे मिट के मिटने वाले जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी ने मारा रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हरदम
और सामीन आप को अगर हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वेबसाइट urduvoa.com तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है तो याद रखिए कि आप हमारे फेसबुक पेज facebook.com/voaurdu के ज़रिए वेबसाइट पर मौजूद तमाम वीडियोस और दीगर जो रिपोर्ट्स हैं और मालूमाती मवाद है उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं एक बार फिर बता दूँ कि आप facebook.com/voa उर्दू पर जाकर तमाम वीडियोस और रिपोर्ट्स और अपडेट जो है वो पढ़ सकते हैं तो अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है हमारी वेबसाइट पर जाने में तो यहाँ लॉगिन कीजिए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/voaurdu तो बात करते हैं इरफान हैदर साहब से जिन्होंने भक्कर से कॉल की है अस्सलाम वालेकुम
जी अस्सलाम वालेकुम
जी जी बोलिए
अस्सलाम वालेकुम
जी आप अब बात कीजिए
जी इरफान हैदर बात कर रहा हूं जिला भक्कर से
जी
जी एक छोटी सी फरमाइश भी करना चाहता था गुलाम अली की आवाज में गजल थी हम तुम्हारे शहर में आए थे मुसाफिर की तरह और कैलेंडर मंगवाना चाह रहा था
तो एड्रेस आप हमारे फेसबुक का जो पेज है facebook.com/chartbustersvoa वहां पर छोड़ दीजिए प्लीज
नेट की सहूलत मेरे पास
अच्छा
नहीं है अगर
मैं अच्छा तो ठीक है आप फोन बंद मत कीजिएगा अंजुम आपका एड्रेस नोट कर लेते हैं ठीक है थैंक यू सो मच बात करते हैं नासिर बलोच से जिन्होंने क्वेटा से कॉल की है अस्सलाम वालेकुम हेलो
अस्सलाम वालेकुम
जी बोलिए
अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम बात कीजिए
जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मैंने तकरीबन 2007 में आपका प्रोग्राम में मैंने कॉल किया था उसके बाद अभी सुन रहा हूँ मैं
साल बाद अच्छा
आपका प्रोग्राम बिल्कुल ऑन एयर नहीं था जी
अच्छा अच्छा तो आपको अच्छा लगा थैंक यू बहुत शुक्रिया हाँ जी कुछ और कहना चाहते हैं नासिर साहब थैंक यू सो मच अल्लाह देता से बात करते हैं अल्लाह देता शाकिर साहब विहाड़ी से हमें कॉल करते हैं अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी मैं तो कॉल करता रहता हूँ आज मेरे साथ आपके एक बड़े अच्छे लिसनर है
जी जी
का तलक सेंट से है और उनकी सिस्टर जो है पिछले दिनों सेनेटर बनी है कृष्णा कोहली
अच्छा जी जी,
चमन कुमार कोहली साहब से आप बात करें।
अच्छा चमन साहब से पहले भी हमारी बात हुई है। जी वालेकुम सलाम चमन साहब।
चौवन कुमार कोहली बात कर रहा हूँ भाजी। मेरा ताल्लुक पसमांदा इलाका है, थर का जो रेगिस्तान इलाका है, मुझे सुना होगा ना?
बिल्कुल सुना है।
जहाँ से हमारी सिस्टर पहले भी सेनेटर हुई कृष्णा कुमारी।
जी जी।
और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ दोस्त अलादीदा शाकर के मार्फत से, कभी नाम आता रहता है, कभी सेठ ममताजन जी भी हमारे नाम लेते
हैं। शुक्रिया।
और मैं जो जिस इलाके में रहता हूँ वो भाजी बहुत पसमांदा इलाका है, रेगिस्तान का इलाका थर का जो है ना।
जी जी। और हमें अपने अपने इलाके के बारे में जैसे उन्होंने लिख के भेजा ना, थोड़ा सा और बताइए कैसे आप लोग रहन सहन वहाँ कैसा है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्या क्या सहूलतें हैं। ठीक है, आप हमें लिख के भेजिएगा।
वैसे मेरी जी जी वैसे मेरी मादरी जुबान तो ढांत की मारवाड़ी जुबान है, जो थरी होती है ना, जो माई भागी ज्यादातर वो गाती रहती है नीम के नीचे में।
बिल्कुल।
और इसी हिसाब से थर का इलाका जो वहाँ पिछले सालों के निस्बत अब तो काफी वहाँ पे चीजें अवेलेबल हो गई हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, और एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट वो भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है।
अच्छी बात है।
सिंध हुकूमत ने ज्यादातर इस पे ध्यान दिया हुआ है कि तालीम की तरफ ध्यान दिया जाए, पर असल में मसला ये होता है कि हमारा थर का इलाका जो है वो बारिशों पे डिपेंड करता है। बारिशें होती है तो वहाँ अच्छा माहौल हो जाता है, जो हमारा इलाका वो कश्मीर की तरह दिखाई देता है ना, हरा भरा होता है, मगर जब बारिशें नहीं होती है तो ये थर का इलाका बहुत सुनसान हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ मवेशी होती है, माल जो होता है, इसके लिए चारा नहीं होता ना। यहाँ पे ज्यादातर जो लोग रहते हैं ये गरीब होते हैं, बिल्कुल गरीब तबके से उनका ताल्लुक होता है। तो मेरा ताल्लुक भी एक ऐसी कम्युनिटी से है कि मैं कोहली कम्युनिटी से ताल्लुक हूँ, तो मेरा रिश्ता है जो जो दोस्तों से बना हुआ है ना पूरे पाकिस्तान में, जहाँ अभी आवाज वॉइस ऑफ अमेरिका की सुनी जा रही है, उनको यही पता है कि थर का इलाका कैसा है। वो रेगिस्तान है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, उमरकोट जो डिस्ट्रिक्ट में उमरकोट से मेरा ताल्लुक है। तो यहाँ अकबर उमर मारवी का किस्सा आपने सुना होगा,
बिल्कुल किस्सा भी सुना और ड्रामा भी देखा,
ड्रामे भी।
बिल्कुल
जी, जी
जी, बहुत शुक्रिया, आपने काफी अच्छी बातें बताई हमें कि गुज़श्ता सालों की निस्बत थर जो है वहाँ पर कुछ तरक्की हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप लोग भी हमें लिखते रहा करें, इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए भी ये जानना कि कौन सा इलाका कैसा है, वहाँ क्या क्या फसलें होती हैं, लोग कैसे हैं, क्या काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैंने आप लोगों से पूछा था सवाल कि आपको और अज़ीज़ मियां कवाल के बारे में कुछ पता हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। माजिद ज़मान शानी ने पूछा है कि आपने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स में डिग्री ली, तो वो कौन से थे? तो वो अरबी, फारसी और उर्दू लिटरेचर में उन्होंने वहाँ से डिग्री ली। और इसके अलावा उनके पास एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने सबसे तवील तरीन, कमर्शली तवील तरीन कवाली जो है वो उनके रैकेट पे है, और वो है 115 मिनट उन्होंने वो तवील कवाली गाई थी, और वो है हशर के रोज़ ये पूछूंगा। तो इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। इसकी फरमाइश मेलसी से साबिर साहब ने की थी, तो साबिर साहब आपकी फरमाइश का ये गीत।
आपके हाथ में
बढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी वेलकम बैक। और जैसे कि अभी यास्मीन की आवाज़ में आपने सुना कि आप वीडियोस और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ताज़ा तरीन वो हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको हमारी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वेबसाइट पर जाने में मुश्किल पेश आ रही है urduvoa.com, तो आप यूँ कीजिए कि हमारा जो फेसबुक का पेज है वो विज़िट कीजिए facebook.com/voaurdu facebook.com/voaurdu। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो तमाम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स, वीडियोस और जितनी भी अपडेट खबरें हैं आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो आप विज़िट कीजिए facebook.com/voaurdu। तो अभी मैंने आप लोगों से पूछा था अज़ीज़ मियाँ कवाल के बारे में, तो उनको बहुत ज़्यादा जो कवालियाँ हैं उन्होंने ज़्यादातर कलाम जो है वो ख़ुद लिखा। इसके अलावा जो उन्होंने क्योंकि वो बहुत लिटरेचर में उनका काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया, बड़ा उन्होंने पढ़ा उसको, तो इसलिए वो ज़्यादातर कलाम ख़ुद लिखते थे। और उनके कलाम का ये था कि वो डायरेक्ट अल्लाह से मुखातिब होते थे और जो शिकवे शिकायत दिल में आती थी वो किया करते थे। तो बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी उनकी कवालियाँ क्योंकि एकदम मुख्तलिफ अंदाज़ था उनका। तो ऐसी ज़्यादातर कवालियाँ उन्होंने ख़ुद लिखी। इसके अलावा अलामा इकबाल का कलाम वो गाया करते थे, सैफुद्दीन सैफ का, और कतील शिफाई साहब का कलाम उन्होंने गाया है। और चूँकि उनको हेपेटाइटिस था और काफ़ी उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, उस वक्त शायद इलाज की उतनी सहूलतें नहीं थीं, तो जब सन 2000 में ईरान की जो हुकूमत है उन्होंने हज़रत अली के यौम शहादत के मौके पर बुलवाया कि आप आएँ और यहाँ पर आकर परफॉर्म करें, तो वहीं पर थे कि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और वहीं पर वो चल बसे तहरान में। लेकिन उनका जो मज़ार है वो मुल्तान में है, जहाँ पर डेथ तो उनकी 6 दिसंबर को हुई, लेकिन उनकी बरसी जो है वो हर साल जुमेरात की मई की जो तीसरी जुमेरात है उसमें 3 दिन की वहाँ पर उर्स मनाया जाता है और मुख्तलिफ़ कवालियाँ होती हैं और उनके कलाम के का इंतखाब जो है वो पेश किया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप भी इसके अलावा कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अब बार बार आशिक खासखेली साहब पूछ रहे हैं वेबसाइट पर, फेसबुक का जो पेज है चार्ट बस्टर्स का, उस पर कि कहाँ गई मेरी फरमाइश। तो अशोक ग्रोवर जी की फरमाइश जिन्होंने बठिंडा से फरमाइश की थी, और आशिक खासखेली जिन्होंने नवाब शाह सिंध से फरमाइश की थी, आप दोनों की फरमाइश का ये गीत।
दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार।
ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام اچھا لگا ہوگا, کیونکہ مجھے بار بار فیس بک پر میسیجز آ رہے تھے کہ آج کی سلیکشن ہمیں بہت پسند آئی. آج کی ساری سلیکشنز آپ سب کی پسندیدہ جو گانے تھے, جو آپ کی فرمائشیں تھیں, انہی پر مبنی تھا. تو مجھے یعنی سعدیہ اسد کو اور پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل کو اگلے جمعے تک کے لیے اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے عزیز میاں قوال کی یہ قوالی آپ کے لیے.
میاں پیار ہو جائے تو صورت نہیں دیکھی جاتی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میں نے دل دیا پیار کی حد تھی, جان دی اعتبار کی حد تھی, مر گئے ہم کھلی رہی آنکھیں, یہ میرے انتظار کی حد تھی.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے. عمران خان نے یہ بات امریکہ کے مؤخر اخبار واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاک امریکہ تعلقات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا تازہ بیان اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطح کے رابطوں کے باوجود بھی بعض معاملات پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات موجود ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے.
جمعرات کو واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے انٹرویو میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں جہاں پاکستان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ پیسے کے عوض کسی دوسرے ملک کی جنگ لڑے گا. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو دوبارہ ایسے حالات کے سپرد نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ ہمارے قبائلی علاقوں میں تباہی ہوئی اور ہمارے وقار کو بھی دھچکا لگا. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ حقیقی تعلقات چاہتے ہیں. جب ان سے اس بات کی وضاحت کرنے کو کہا گیا تو عمران خان نے کہا کہ وہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ایسے تعلقات چاہتے ہیں جیسا کہ چین کے ساتھ ہیں. ان کے بقول چین کے ساتھ پاکستان کا تعلق یک طرفہ نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ نوعیت کے تجارتی تعلقات قائم ہیں. انٹرویو لینے والی واشنگٹن پوسٹ کی سینئر صحافی لالی ویمس کے اس سوال پر کہ کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے تو عمران خان نے سوالیہ انداز میں کہا کہ سپر پاور سے تعلقات کون نہیں رکھنا چاہتا. جب عمران خان سے پاکستان میں طالبان کے محفوظ ٹھکانوں کی موجودگی سے متعلق امریکی الزامات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایسی کوئی محفوظ پناہ گاہیں موجود نہیں ہیں. امریکہ کا یہ الزام رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے شدت پسندوں کے ٹھکانے موجود ہیں جو افغانستان میں عسکری کارروائیاں کرتے ہیں. عمران خان کے بقول پاکستان نے متعدد بار امریکہ کو یہ کہا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ محفوظ پناہ گاہیں کہاں ہیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کا امن پاکستان کے مفاد میں ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں گے تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک طالبان پر دباؤ ڈالنے کی بات ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب امریکہ بات چیت کے ذریعے افغان مسئلے کا حل چاہتا ہے تاکہ امریکی فورسز واپس جا سکیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ امریکی فوج واپس چلی جائے، اس پر عمران خان نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، جس پر انہیں طالبان خان کہا گیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ اب ہر کسی کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا صرف سیاسی حل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نقطہ نظر سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جلدی افغانستان سے چلا جائے، جیسا کہ اس نے 1989 میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں افراتفری نہیں چاہتے اور اس بار اس مسئلے کا مستقل حل ہونا چاہیے، کیونکہ 1989 کی افراتفری کے بعد طالبان سامنے آئے تھے۔ وزیراعظم عمران خان کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، اور اسی سلسلے میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے رواں ہفتے پاکستان کا دورہ مکمل کیا۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا بیان اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ اعلی سطح کے رابطوں کے باوجود بھی بعض معاملات پر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات موجود ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میرے خیال میں بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ پالیسیز میں اختلاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے بھرپور طریقے سے وہی پالیسی اپنائے جو کہ ان کی ہے، پاکستان سمجھتا ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ساری بات تو یہ ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے، یہ اختلافات ہیں، بنیادی اختلافات ہیں جو شروع سے ہیں لیکن اب کچھ کم ہو رہے ہیں۔ پاکستان زیادہ تر جھک رہا ہے امریکہ کی پوزیشن کی طرف، لیکن پھر بھی پوری طور سے نہیں۔
دوسری طرف پاک بھارت تعلقات سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارت میں انتخابات ہونے والے ہیں اور چونکہ حکمران جماعت ان کے بقول پاکستان مخالف ہے، اس وجہ سے اس نے تعلقات کو بہتر کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ بھارت میں انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت شروع ہو سکتی ہے۔ ممبئی حملوں سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنی حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان حملوں سے متعلق پاکستان میں درج مقدمے کی صورتحال معلوم کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنا خود پاکستان کے مفاد میں ہے، کیونکہ یہ ایک دہشت گرد حملہ تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔